ओम शांति। अब आज का ये सत्र हम ऐसी बातें सुनने जा रहे हैं कि स्वयं भगवान इस धरा पर कब आए, कैसे आए, और एक निराकार ज्योति बिंदु होते हुए इस साकार सृष्टि पर सर्वशक्तिवान परमात्मा ने इस दिव्य रचना के लिए क्या विधि अपनाई है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का अस्तित्व कैसे हुआ, ये जानने की जिज्ञासा तो होगी ना। जानते हैं, आप में से कोई जानते हैं तो हाथ उठाए। कोई नहीं जानते। हाँ, जो संस्था में आते होंगे उनको मालूम होगा। ये है सन 1936 की बात, जबकि सर्वशक्तिवान परमात्मा ने सिंध हैदराबाद में रहने वाले एक हीरे जवाहरात के व्यापारी को दिव्य साक्षात्कार कराए। तो भगवान ने जिसको सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, उस हस्ती को सिलेक्ट करने के पीछे ऐसा क्या रास था, वो जानने के लिए मैं पहले जिनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जिनके पूर्व जीवन का नाम दादा लेखराज जी थे, उनके बारे में आपको थोड़ा अलब जलब साक्षात्कार कराऊंगी। लखीराज वो एक बहुत ही सामान्य परिवार का बच्चा था। उनके पिताजी शिक्षक थे, टीचर की नौकरी करते थे। परिवार में वो सबसे बेटा बड़ा था, लखीराज। अब कुछ भी क्लास पढ़ी होंगी, और उनकी 14 साल की उम्र थी, अंदाज लगा दो कितना पढ़े होंगे, 8-9 क्लास पढ़े होंगे। और उनके पिताजी बीमार हुए और शरीर छोड़ दिया। तो क्योंकि घर में बड़े थे, घर को संभालना था, तो पढ़ना छूट गया। और उनके चाचा ने उनको अपनी दुकान पर बिठाया काम करने के लिए। तो वो चाचा की जो दुकान थी वो करियाने की दुकान थी, अनाज की दुकान थी। अब ये लखीराज बहुत शालीन लड़का था, बहुत संस्कारी था, और बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव का था। तो वो दुकान पर बैठता था, और समझो कोई गरीब आ गया तो 500 किलो अनाज ऐसे ही दे दिया, या किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसे उधार में दे दिया। तो उनके चाचा को मालूम चला कि ये लड़का तो ऐसा करता है, खोट में चला जाएगा काम, तो उसको वहां से उठा दिया। और अपने फ्रेंड के वहां, चाचा ने ही अपने मित्र के वहां उसकी नौकरी लगाई, एक ज्वेलरी के दुकान पर। दुकान खोलना है, मटकी भरनी है, सफाई करनी है, ऐसे काम में उसको लगा दिया। अब वो वहां पर बड़ी निष्ठा के साथ ये जो भी उनको काम दिया जाता था वो करते रहे। अब वो काम करते करते वो धीरे धीरे बहुत होशियार बनते गए। वो हीरे घिसने का काम आदि आदि भी साथ में रहते सीखता गया। वो ईमानदार भी बहुत था, तो वो हीरे की दुकान में तो झाड़ू लगाओ तो कीचड़े में भी क्या आएगा, हीरा। तो हीरे की करची आती थी, हीरे आते थे, तो बड़ी ईमानदारी के साथ वो सब कुछ अपने मालिक को देते थे। तो जो छोटी छोटी करची होती थी वो कहते थे ये नहीं चाहिए, ये तुम, इसको जरूरत नहीं है। तो उसने फिर क्या किया, वो छोटी छोटी करची होती थी ना, उसमें से लाख पर उसको लगा करके वो अच्छी अच्छी आइटम्स बनाने लगे, अच्छी अच्छी चीजें बनाए, क्रिएटिव किया। फिर वो बना करके फिर मालिक को बताया कि ये बना हुआ है और इसको कुछ काम लगा सकते हो। तो बोला नहीं, तुमको जो करना हो सो करो। तो ऐसे फिर वो देते थे अपने किसी किसको। अब धीरे धीरे थोड़े समय के बाद उसके मन में आया कि मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ हीरे का। तो उसने अपने चाचे को भी बोला और वो मालिक को भी बोला कि मेरे को विचार आता है कि मैं भी बिजनेस करूं। तो बड़ी खुशी से उनके मालिक ने कहा कि हाँ तुम कर सकते हो। तो फिर उसने अपना हीरे का बिजनेस शुरू किया और छोटी उम्र में ही उनकी परख शक्ति से वो बिजनेस में वो काफी आगे बढ़ने लगे। अब बचपन से भक्ति के संस्कार बहुत थे, तो वैसे उनको शादी करने का विचार नहीं था। वो अपने अनुभव में सुनाते बाबा कि वैसे मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे भक्ति में ही रस था, लेकिन एक बारी एक नाटक देख लिया। उस नाटक का नाम था स्वरूप सुंदरी। अब वो नाटक देखने के बाद उनके विचार बदल गए कि चलो शादी कर लेते हैं। तो शादी किया। शादी के बाद तो बच्चे पैदा हुए, बच्चियां पैदा हुई, ऐसे 60 साल की उम्र तक अपना गृहस्थ चलाते रहे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में 13 गुरु किए। कितने? 13 गुरु किए। वो गुरु इसलिए करते थे कि उनको ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा थी। समझो उसने एक गुरु किया और उनको गुरु के साथ कुछ समय रहने के बाद लगा कि इनसे तो मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो छोड़ के दूसरे को तीसरे को। तो लास्ट के 2-3 गुरु के उनके जो अनुभव हैं, तो एक बार ऐसा हुआ उनके घर में छठी का प्रसंग था और गुरु का तार आया, लखीराज बाबू कम सुन। अब उनकी गुरु भक्ति ऐसी थी कि गुरु के बुलावे पर वो तुरंत जाता था। तो उसी दिन उनके पोते की, बेटे के बेटे की छठी का दिन था और घर में करीब 2000 से ज्यादा लोग आने वाले थे। और इस तरफ ये तार आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि जशोदा, उनकी पत्नी का नाम जशोदा था, जशोदा मेरी गाड़ी तैयार करो और गुरु का बुलावा आया है, मेरे को जाना है। तो उनके मिसिस ने कहा कि कल चले जाना, आज का प्रसंग पूरा करके कल चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने क्या जवाब दिया, जशोदा गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, मौत का बुलावा। क्या मौत आए तो तुम ऐसे कह सकती हो कि कल आना, मैं जाऊंगा। तो वो चले गए। जाके गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और क्या सेवा है पूछा। तो वो गुरु जी का दूसरा चेला सट्टे में हार गया था और उनको 10,000 रुपए की जरूरत थी, तो उन्होंने दिया बेशक गुरु को। लेकिन जब वो रास्ते से वापस जा रहे थे तो उसके मन से आवाज निकला, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश। अर्थात गुरु का वो काम उसे पसंद नहीं आया, गलत रास्ते पर जाने वाले चेले को रोकने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करने का। उन्होंने उन गुरु को अंतिम प्रणाम कर लिया। फिर उन्होंने दूसरा गुरु किया, 12वें नंबर का गुरु किया। उस गुरु करने के बाद उनको दिव्य साक्षात्कार हुए और उस दिव्य साक्षात्कार में विष्णु चतुर्भुज को देखा और आवाज आया, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम। फिर दूसरा सीन ऐसा दिखाई दिया कि आसमान से कोई तारे उतर रहे हैं और कोई राजकुमार बनता है, कोई राजकुमारी बनती है, कोई महाराजा बनता है, कोई महारानी बनती है, कोई गोप गोपियां बन रही हैं, और बहुत ही सुंदर स्वर्ग का दृश्य देखा। फिर तीसरा दृश्य देखा, भयंकर महाविनाश देखा, एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वॉर, गृह युद्ध और खूनी नाहक खेल हो रहा है। और वो इतना भयानक देखा, जो उसी ध्यान अवस्था में कहा, प्रभु बस करो बस करो, अब मेरे से नहीं देखा जाता है। और चौथा दृश्य, उसमें एक ज्योति बिंदु, प्रकाश बिंदु को देखा और आवाज आया, लखीराज तुम्हें माताओं बहनों के द्वारा इस भारत भूमि को स्वर्ग भूमि बनाना है, तुम्हें माताओं बहनों के द्वारा इस भारत भूमि को स्वर्ग भूमि। तो ये जो उनको दिव्य साक्षात्कार हुए, तो उनके मन में प्रश्न उठने लगे कि ये मैंने क्या देखा, अब मुझे क्या करना चाहिए। और उनकी इतनी गहरी इम्पैक्ट थी दिल दिमाग में, तो वो अपने गुरु के पास गए, गुरु को सब कुछ सुनाया। उन्होंने समझा हो सकता है ये गुरु कृपा हो, तो गुरु को सारी बात सुनाई। तो गुरु जी ने कहा, लखीराज लगता है तुम शायद पागल हो गए हो। तो ठीक है, वो गुरु जी से सुन के चले गए। लेकिन उनको समझ में आया कि ये गुरु का प्रभाव नहीं है, ये गुरु से भी ऊंची कोई सत्ता का मुझे अनुभव हुआ है। तो ऐसा सोच करके वो एक मास एकांत में चले गए और एकांत में जाकर के वो बहुत मनन चिंतन करने लगे, पर वहां उन्हों को बहुत दिव्य अनुभूतियां होने लगी। कभी तो वो पेन से दीवारों पर चित्र कर रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं, मैं आत्मा हूं, तू आत्मा है, हम ऊपर से आए हैं, हमको ऊपर जाना है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, जैसे कोई उनसे ये सब कुछ लिखवा रहा है ऐसा वो अनुभव कर रहा है। और ऐसे करते करते उनके मन में ये ख्याल आया कि अब मुझे भगवान का काम शुरू करना है। तो जब वो वापस गए घर, तो उन्होंने पहला काम ये किया, अपने पार्टनर को बुलाया। पार्टनर को बुला करके कहा कि देखो, पाना था सो पा लिया, अब बाकी काम क्या रहा। मुझे तुम्हारे हीरे जवाहरात तो पत्थर नजर आते हैं, अब मुझे तो राजा ही मिली है, मैं ये गधाई को क्या करूंगा। इसलिए मेरे हिस्से में जो आता है मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो पार्टनर तो आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है, या मेरे से कुछ गलती हो गई है। वो क्षमा मांगने लगा, क्योंकि दादा की तो लोगों के बीच बहुत ही गुडविल थी, इमेज बड़ी अच्छी थी। आज भी कलकत्ता में अभी भी उनके नाम की पीढ़ियां हैं लखीराज की, तो बहुत ही नामी ग्रामी बिजनेसमैन था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा है, लेकिन अब मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे देखना भी नहीं है, मेरे हिस्से में जो आता है मुझे दे दिया जाए। फिर बाबा को दो बेटे थे, चार बच्चियां थी, दोनों बेटे, उनकी बहू, उनके बच्चे, बेटियां, दामाद, उनके बच्चे, सभी को बुलाया बाबा ने। सबको बुला करके, बिठा करके अपने अनुभव की बातें उन्हों के आगे रखी है और सुनाया, मैंने क्या क्या देखा, मैंने क्या अनुभव किया, भगवान का क्या आदेश है और हम सभी को क्या करना चाहिए। तो वो सारा सुना करके अपने परिवार वालों से पूछा कि क्या इस कार्य में आप सभी मुझे साथ देंगे, आप सभी मेरे साथ रहेंगे, क्या हम अपना तन मन धन स्थावर जंगम मिलकत आदि सब इन माताओं बहनों के नाम पर करके हम उनको समर्पित हो जाएं। परिवार वालों से ये पूछते हैं। अब जब ईश्वर को कोई कार्य कराना होता है ना, तो उसकी देवीय बुद्धि सबकी बुद्धि के पर कार्य करना शुरू करती है। बाबा की इस बात को सुन करके उनों के परिवार वाले सारे तैयार हो गए, सम्मित दे दी कि हाँ दादा, हाँ बाबा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। फिर उसके बाद बाबा ने पूरे एक साल में अपने लौकिक कारोबार सारा समेट करके, ठीक करके, जो करना चाहिए वो करके, और सिंध हैदराबाद में एक ओम मंडली बहनों की चलती थी, उनमें उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब जाया करते थे उस सत्संग में, उनकी पुत्रवधु। उसी सत्संग में से आठ माताओं को, माताओं बहनों को ट्रस्टी के रूप में निमित किया, उसमें अपने घर का कोई भी मेंबर नहीं, ट्रस्टी के रूप में निमित किया। और अपना जितना भी उस समय, कराची की बात है ये, अभी तो वो एरिया पाकिस्तान में है, चार पांच मकान थे, पांच छह गाड़ियां थी। उस जमाने के वो लाखों पति थे, 1937 दिवाली के दिन आठ माताओं को ट्रस्टी बना करके अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और खुद भी समर्पित हो गए कि मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपके साथ सेवा में हूँ और हम सभी मिल करके इस भारत भूमि को स्वर्ग भूमि बनाएंगे। अब भगवान ने इस आत्मा को क्यों सिलेक्ट किया, जवाब दीजिए। इतना सुनने के पश्चात भगवान ने इसी आत्मा को क्यों सिलेक्ट किया और किसी को नहीं? और उनके अंदर समर्पण भाव था, अपने आप को समर्पित कर दिया। और क्या था? हाँ बोलो ना। हाँ, पवित्र थे, उनकी भावनाएं पवित्र थी। वेरी गुड। और दयालु थे, दृढ़ निश्चयी थे, किसी का दुख देख नहीं पाते थे। सबसे बड़ी बात, जो गुरु की आज्ञा को काल का पुकार समझता था, गुरु के बुलावे पर सब छोड़ के चले गए। भगवान ने इनकी ये क्वालिटी देखी और इतनी बड़ी घर गृहस्थी होते हुए कोई देह के संबंध का मोह नहीं देखा, निमित्त किसको बनाया? न्यूट्रल आठ माताओं बहनों को बनाया। बड़े ईमानदार थे, भक्ति भावना से भरपूर थे, जिस कारण वो परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बना। 1937 में कराची में जब ये यज्ञ शुरू हुआ, तो अब शुरू कैसे हुआ? तो बाबा ने इन माताओं बहनों को कहा कि मैं आपका सेवक हूं। अब माताएं बहनें तो ये तो बड़ी हस्ती थी, तो वो कहते थे बाबा आप हमारे बाबा हो, अभी आप हमें सत्संग कराओ। तो ये जो अपनी गीता होती है ना, तो उसी गीता को बाबा पढ़ करके सुनाते थे, सभी बैठते थे सुनते थे। तो क्या हुआ कि जब बाबा गीता सुनाते थे ना, तो समझो वो गीता सुनाते सुनाते आपके ऊपर नजर पड़ गई, आप ध्यान अवस्था में चले जाएंगे। जिसके पर नजर पड़ने लगी वो ध्यान अवस्था में जा रहे हैं। अब वो ध्यान अवस्था में ले जाने वाला कौन था? स्वयं परमात्मा, जो ज्योति बिंदु है, जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया, उनके द्वारा ये सब कराने वाला वो दिव्य दृष्टिदाता था। तो लोग ध्यान अवस्था में जाते थे और ध्यान अवस्था में जाके रास करते थे, स्वर्ग को देखते थे, और वो देख करके फिर अपने घरों में जाके सबको वर्णन करते थे कि लखीराज दादा के पास हम गए और वहां तो मुफ्त में भगवान मिलता है, बैठे बैठे भगवान मिलता है, चलो भगवान के पास। तो लोग आने लगे, सत्संग चलने लगा, सैकड़ों की संख्या से हजारों की संख्या में आने लगे। सबको ऐसे साक्षात्कार होने लगे, तो समाचार फैल गया कि ये दादा लखीराज जादूगर बन गया है, अब वो सबको जादू करता है और उनको 16,108 पटरानियां चाहिए, उसमें से थोड़े तो मिल भी गए हैं, ऐसे ऐसे न्यूज बनने लगे हैं। अब ये तो परमात्मा का कार्य होना था। कुछ ही दिनों के बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ये ऐलान किया कि इस सत्संग में वही आ सकते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, जिनको कोई व्यसन नहीं होगा। वहां तो लोग पीने वाले, सिंध, हैदराबाद में, कराची में सारे व्यसन होते थे उनों के जीवन में, मीट मटर खाने वाले। तो कहा जो मीट मटर नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, कोई व्यसन नहीं होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, वही सत्संग में आ सकते हैं। और जिनके पेरेंट्स, माता पिता या जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो परमिशन लिखित में देंगे कि हमारे बेटा या बेटी या बहू इस सत्संग में आना चाहते हैं, और हम उन्हें अपनी तरफ से छुट्टी देते हैं, उन्हों को ही सत्संग में अलाउ करेंगे। तो संख्या का क्या हो गई होंगी, संख्या कैसी हो गई होंगी, कम हो गई, हजारों में से सैकड़ों में लोग आने लगे। फिर वहां पर जब लोग आके रहने लगे, शुरू में तो रहते नहीं थे, फिर करीब 350 के आसपास भाई बहन, अब कुछ परिवार के परिवार लोग आ गए, जिनको 7-8-10 साल के बच्चे भी हैं। तो 50 तो छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 साल से लेकर के 12-15 साल के बच्चे, ऐसे 50 तो बच्चे थे। तो करीब 350 भाई बहनों का उसी एक ही कैंपस में रहने का प्रबंध किया। एक में भाई रहते थे, एक में माताएं बहनें रहती थी, और एक में बच्चों का रहने का प्रबंध किया, और एक में बच्चों के लिए स्कूल चालू किया, और एक में बाबा रहते थे अलग से। तो उस प्रकार से पूरी आश्रम व्यवस्था बनी, और फिर आश्रम के हिसाब से सारी दिनचर्या बनी, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बने, क्योंकि जहां 350-450 लोगों को रहना हो तो सब व्यवस्था चाहिए नहीं। जैसे अभी आप लोग यहाँ आए हुए हो, तो यहाँ पूरी आश्रम व्यवस्था है, तब हम आराम से रह पा रहे हैं। तो उस प्रकार से वहाँ शुरू हुआ। 14 साल तक तो ये लोग वहाँ रहते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और कोई प्रवृत्ति तो थी नहीं, इसमें से कोई भी कमाने वगैरह नहीं जाते थे। 14 साल की ये तपस्या के बाद क्या हुआ, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना में, जिसको ध्यान अवस्था कहते हैं या दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसमें ध्यान अवस्था के द्वारा परमात्मा से मैसेज प्राप्त होते हैं, और जिस मैसेज के द्वारा बहुत सारा कार्य होने लगता है। तो 1947 में जो युद्ध छिड़ा, उसके करीब 4-5 मास पहले की बात थी, तो एक छोटी बच्ची वो ध्यान अवस्था में गई, ट्रांस में गई। अब वहां ट्रांस में परमात्मा ने उनको संदेश दिया, नहीं, ध्यान अवस्था में पहली बारी तो उसने बहुत काले काले कपड़े वाले लोगों को देखा, हिंसा होती हुई देखी और बहुत दर्दनाक खेल देखा, तो वो डर के मारे आ गई और उन्होंने बाबा से पूछा, ब्रह्मा बाबा से, कि बाबा आज तो मैंने ध्यान अवस्था में ऐसा देखा, तो ये क्या है? तो बाबा ने कहा, तुम शिव बाबा से पूछ के आओ ने ये क्या है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा के शरीर में अपनी आत्मा तो थी ही, लेकिन साथ साथ सर्वशक्तिवान पिता भी उनके द्वारा काम करते थे, परंतु वो सारा समय उनके शरीर में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जब रथ का जरूर पड़े तो भगवान आके रथ यूज कर लेवे, जैसे हमारे पास गाड़ी हो, जब जरूर पड़ेगी तो गाड़ी में बैठेंगे ना, बाकी थोड़ी गाड़ी में बैठे रहेंगे। तो ये तो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, वो इस रथ में क्यों बैठा रहेगा, जब काम होगा तो आएगा। तो बाबा ने कहा, जाओ तुम ऑलमाइटी बाबा से पूछ के आओ कि ये क्या बताया। तो फिर वो ध्यान अवस्था में बाबा के पास पहुंची, बाबा को पूछा, बाबा आपने ये क्या बताया, ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे को बोलो कि 1.5 साल चले इतना रेशन, केरोसिन, मिट्टी का तेल उसको बोलते, और खाने पीने की जो भी सामग्री, वो 3 मास में सारी तैयारी कर लो, और सभी बच्चों को 1.5 साल चले इतने कपड़े भी सिलाई करवा के रख लो, और ये काम 3 मास के अंदर कर लेना है। तो बाबा ने ये डायरेक्शन दिया, काम शुरू कर लिया। क्यों, वो तो पूछेंगे नहीं ना, जब भगवान ने बोल दिया डायरेक्शन अमल में आ गया। जैसे ही कार्य संपन्न हुआ और 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा। अब उस युद्ध में आप लोगों को तो मालूम नहीं होगा, जो हमारे पुराने लोग हैं मालूम है, एक एक हिंदू लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ करके निकाल दिया, कुएं में डाल दिया, मार दिया, इतना कत्ले आम चला था। उस समय अपनी संस्था वहां ही थी। उस समय बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या कार्य करवाया, संदेशी के द्वारा प्रोग्राम भेजा कि बच्चों को बोलो 50-50 के ग्रुप में मेडिटेशन करे, तपस्या में बैठे। समझो 50 का ग्रुप 1 घंटा योग किया, वो उठेगा, दूसरा 50 का ग्रुप बैठेगा, वो उठेगा, डे एंड नाइट 2400 घंटा तपस्या में रहते थे ये। और बाबा ने कहा कि बच्चे, मुस्लिम लोग आएंगे तुम्हें हैरान करने, अगर तुम तपस्या करते रहेंगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है, और जब वो लोग आवे तो उनको एक ही बात कहना है, खुदा के बंदे नापाक काम करेंगे तो ये तुम्हारा पाकिस्तान ना पाकिस्तान बन जाएगा, इतना ही बोलने का। तो बस तपस्या शुरू हो गई। अब हुआ क्या, ये लोग ये महसूस करने लगे कि ये तो सब खुदा के बंदे हैं और इनों की खिदमत से हम सलामत हैं, इसलिए इनों को तो हम कभी नहीं जाने देंगे। और ट्रक भर भर के सब्जी दे जाते थे, दूध ले दे जाते थे, फल फ्रूट दे जाते थे, और कहते थे बस आप खुदा के बंदे हो, आप फरिश्ते हो, आप लोग यहां रहो, हम आपको कोई तकलीफ नहीं करेंगे। तो 1947 से 51 तक फिर भी वहां रहे, और 51 में यहां माउंट आबू पांडव भवन आपने देखा ने, जहां पर अपना मुख्यालय है, वहां पर उसके पहले 2-3 किराए के मकान में भी रहे, फिर आखिरी यहाँ पर स्टेडी हुए और फिर यहाँ आने के बाद भारत के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में ये ईश्वरीय संदेश लेकर के बाबा ने ग्रुप्स को भेजा, जिसमें दो तीन भाई, चार पांच बहनें, वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन ईश्वरीय संदेश लेकर के वो लोग गए। अब वहां भी जब ये लोग सेवा पर गए तो वहां भी क्या ईश्वरीय चमत्कार होने लगे। ये लोग नदी के तट के किनारे जाके बैठते थे, सागर के किनारे, कहां बगीचे में, कहां मंदिर पर सफेद चद्दर बिछा के ध्यान में बैठते थे। लोग आकर के सामने से पूछते थे कि भई आप कौन हो, तो वो कहते थे हम आत्मा हैं, ज्ञानी सुनाते थे। तो आप कहां से आए हो, तो हम तो भगवान के घर से आए हैं। यहां क्यों आए हो, हम आपको प्रभु का संदेश देने आए हैं। क्या है प्रभु का संदेश, अब समझो वो पूछ रहे हैं और वो सुना रहे हैं ना। ये सुनाते सुनाते सुनाने वाले बैठे हैं और सुनने वाले ध्यान अवस्था में चले जाते, और वो ध्यान अवस्था में जाके अनुभव कर रहे हैं। भगवान उनों को ये अनुभव कराते हैं कि ये मैंने भेजे हुए मेरे मैसेंजर्स हैं, उनकी मदद करो। ऐसे बहुत ही मिरेकल्स होते गए, सभी का सहयोग मिलता गया, लोग आबू आते गए, फिर अपने अपने स्थान पर निमंत्रण दे करके केंद्र खुलवाते गए। ऐसे करके ये सेवा की प्रवृत्तियां चलती गई। आज तो पूरे भारत में 8,500 केंद्र हैं, और छोटे छोटे क्लासेस जिसको कहा जाए, जहां 15, 20, 25, 30 लोग, किसी के घर में बड़ा हॉल है, या कोई जगह खाली मकान है, या कहां किराए का रख करके भी चलते हैं, ऐसे 37,000 क्लासेस चलते हैं। और हमारे जैसी हजारों बहनों ने अपना जीवन इस सेवा में समर्पित किया, ऐसे ही हजारे भाई लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। इस प्रकार से ये अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य चलता। ये एक में चार है, 4-in-1। कैसे, सबसे पहले ये एक डिवाइन फैमिली है, परमात्मा मात पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो ये एक डिवाइन फैमिली हो गई, भाई बहन है। दूसरे नंबर में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, गॉडली यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़कर के नर नारायण बन रहा है, नारी लक्ष्मी बन रही है। तीसरे नंबर में ये हेल्दी हॉस्पिटल है, दुनिया में शरीर के रोगों के लिए हॉस्पिटल है, मन के बीमारी के लिए हॉस्पिटल है, लेकिन जो बुद्धि भ्रष्ट बन गई है उसको श्रेष्ठ करने के लिए ये एक ही हॉस्पिटल है। और चौथा, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस है, और हम सभी शेयर होल्डर्स हैं। कैसे, कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, कोई अपनी विशेषताओं से करता है, कोई अपने स्थान से करता है, कोई अपने साधन से करता है, कोई अपनी ईश्वरीय सेवाओं से करता है। जो हमारा शेयर जमा होता है आने वाले जन्मों के लिए, तो इसीलिए उसको क्या कहते, जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस है। और हम सभी एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई करते हैं। तो ऐसे अभी आप किसी संस्था में नहीं आए हो, कहाँ आए हो, कहाँ आए हो, लगता है अपने घर में आए हो। हाँ, जो समझते हाँ हम अपने घर में आए हैं, हाथ उठाए, घर की फीलिंग मिली सबको। हाँ, तो ये आप अपने घर में आए हैं, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। 750 करोड़ आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, उसमें से गिने चुने लोग जिनके द्वारा भगवान ये काम करवाता है। पांडव 5 थे, गायन है ना, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे और यादव अनगिनत थे। हम उस 5 पांडव में से एक हैं, ऐसा अपने को समझते हुए अपना मैक्सिमम फायदा इस जन्म में उठाएं। ये कोई इंसान के द्वारा हो रहा कार्य नहीं है, ये सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा हो रहा है, जो हमारा बाप है। ओम शांति।